1448 हिजरा के अय्याम यज़ा के पहले अशरे की आज ये आखिरी मजलिस है, और चूँकि इस मजलिस का वक्त और ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा बातें करने के बजाय जो मेरा टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड कुरान की 3-4 आयतों की तिलावत कर दी है कि इन आयतों का तर्जमा ही अगर आप सुन लें तो गालिबन इसके बाद फिर मजीद किसी गुफ्तगू की या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। पहली आयत वही है जो मैंने शुरू की मजलिसों में तिलावत की थी और जो एक जुमला मैंने अर्ज़ किया था कि मखमल में टाट का पेवंद नहीं लगता है, ऐ ईमान लाने वालों इस्लाम में दाखिल होना है तो उदखुलु फिस्सिल्मे काफा, मुकम्मल और कम्प्लीट तरीके से दाखिल। मैंने कल भी एक जुमला शायद कहा था आशूर की फाका शिकनी की मजलिस में कि आमाले आशूरा में एक 4 रकत नमाज भी शामिल है जो वेस्टर्न कंट्रीज में ज़रा कम पढ़ी जाती है टाइम की वजह से, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में, ईस्ट अफ्रीका में, इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि हर अज़ा खाने में वो नमाज बाकायदा टाइम निकाल के पढ़ी जाती है। बल्कि चूँकि 2-3 दफ़ा तस्किरा हुआ कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी तक ये रवाज, लेकिन कनाडा में मैंने बहुत कम देखा और US में भी कम देखा। एक 4 रकत नमाज है, आशूर के दिन की नमाज है, आमाले आशूरा का पार्ट है, और जैसा कि मैंने कल कहा था कि जो आशूरे का सबसे मशहूर अमल ज़ियारत आशूरा, तो फिर यह है कि आप सारा साल पढ़ते रहते हैं, जो सबसे मशहूर अमल है कि 7 टाइम्स आगे जाना और पीछे आना, वो उस नमाज के से कनेक्टेड। उसके अंदर बाकी चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं। एक 4 रकत नमाज में, मैं बहुत जल्दी ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उमूमन 11th मुहर्रम की मजलिस में मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ, तो उसमें एक तो सूरह काफिरून है, चले समझ में आ जाता, सूरह काफिरून क्या है, लकुम दीनकुम वलिया दीन, ये कुफर के साथ इस्लाम का पेवंद नहीं लग सकता, ये मिला के क्या। हमारे पाकिस्तान में आजकल एक पॉलिटिकल टर्म इस्तेमाल होती है, हाइब्रिड सिस्टम, दो मुख्तलिफ सिस्टम्स को मिला के चलाना, तो इस्लाम के साथ कुफर नहीं चल सकता। लकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, मेरे लिए मेरा दीन, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। करबला तो इसी का नाम, सेपरेशन हो रहा है कि हक एक तरफ है, बातिल एक तरफ है, इसको मिला के काम नहीं चलेगा। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी आपको फास्ट नजर आए, लेकिन चूंकि टाइम कम है बातें बहुत सारी। दूसरा है सूरह कुल हुवल्लाह, 4 रकत नमाज के 4 सूरे, वो भी समझ में आता है। पूरे जिहाद करबला का मकसद ही ला इलाहा इल्लल्लाह था, बहुत ही मशहूर फारसी की रुबाई है। बहरहाल इस मजमे के सामने क्या पढ़ूं, जिनके लिए उर्दू शेर समझना भी मुश्किल होता है, हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन, यह कलमा इला इलाहा, पूरे जिहाद करबला का मकसद ये कलमा था। तो सूरह तौहीद, आमाले आशूरा का एक पार्ट है, 1000 टाइम कुलवल्ला मुकम्मल करें आशूर के दिन। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बहरहाल हमारी ताकत से बाहर है, क्योंकि बहुत सारे और इबादतें भी अंजाम देना, लेकिन कम अज कम नमाज आशूरा में इसको शामिल करके याद दिलाया कि करबला का जिहाद तौहीद परवरदिगार के लिए। चौथा सूरा भी समझ में आ जाता है, सूरह मुनाफिकून। करबला तो नाम ही इस बात का था कि जितने मुनाफिक थे जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब और पर्दा डाला था उसको नोच के हुसैन ने फेंक दिया, करबला ने बता दिया कि निफाक क्या है और ईमान क्या। मगर चौथा जो सूरा है, जो सीक्वेंस में तीसरा बनेगा, तो वो है सूरह अहज़ाब। चले सूरह अहज़ाब की कुछ आयतें तो समझ में आती हैं कि आशूरे के अंदर फजाइल अहले बैत की आयत तथीर इसी सूरे में है। जो आयत मैंने अभी तिलावत की खुतबे के आखिर में, इन्नल्लाह व मलाइकतु, वो भी इसी सूरे में है। इसी सूरे में वो आयत है जो गदीर खुम में पैगम्बर ने ऐलान से पहले तिलावत की थी कि नबी औला बिल मोमिनीन, कि नबी मोमिनों का मौला। गदीर में यही कहा था ना कि मैं मौला हूँ, जो मुझे मौला मानता है वो अली को मौला माने। ये आयत इसी में, इसी में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना की आयत है। ये आयतें तो समझ में आती हैं, लेकिन सूरह अहज़ाब में और बहुत से अहम पैगाम, बल्कि बास तो ऐसे मैसेजेस हैं कि अगर आपको आशूर के दिन उर्दू में समझाया जाए तो शायद आप इसे तौहीन आज़ादारी समझें या तौहीन अहले बैत समझें। आशूर का दिन जिहाद अपनी पूरी शिद्दत पर है, लाशें गिर रहे हैं, शहजादों के लाशें उठाए जा रहे हैं, और आप शादी ब्याह के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं सूरह अहज़ाब में, के मसाइल डिस्कस में। تو چلے میں سورہ احزاب کی تفسیر نہیں بتا رہا ہوں, اس کے بالکل شروع کی آیت ہے دوسری تیسری, کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی شخص کے دل میں سینے میں دو دل نہیں بنائے, ایک دل ہے بس, دو دل نہیں, یہ قلبین کا لفظ ہے, دو دل, قلبین, دو دل نہیں بنائے. اب کیا مطلب دو دل نہیں بنائے؟ مولا کا وہ جملہ, کسی نے جا کر کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, کہا تیری نجات اسی میں, لیکن کیا کروں مولا جو آپ کے مخالف و دشمن ہیں ان کے بارے میں بھی میرے دل میں سافٹ کارنر ہے, مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں. امام نے فرمایا کہ تو کانا ہے, کانا ہے جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے ایک آنکھ نہیں ہوتی, یا تو اپنی دونوں آنکھیں پھوڑ لے اندھا بن جائے, اور یا دونوں آنکھیں رکھ لے. دیکھیے ہمارے یہاں یعنی ایسٹرن کلچر, انڈیا کی بات نہیں کر رہا, باقی پورے ایسٹرن کلچر میں کانے کی شکل صبح کو دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پورا دن برا گزرے گا. اب یہ ایک اگر فزیکل پرابلم ہے تو اس کا تو ہمیں مذاق نہیں اڑانا ہے, لیکن مولا فرما رہے کہ یہ جو ہے نا کہ جو دو ایمان اور کفر کو یا ایمان و نفاق کو علی کو اور علی کے دشمنوں کو ملا کے چل رہے, یہ دو کشتیوں میں تم نے پیر رکھا ہے, دو کشتیوں میں جو پیر رکھے گا وہ ڈوب جائے گا. اب یہ بار بار میسج دیا جا رہا تھا اور کربلا کا مقصد بھی یہی تھا کہ بالکل کلیئر ہو جائے یہ ادھر جانا یا ادھر جانا. اب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, مکمل تمہیں مومن بننا, جیسے میں نے 9 محرم کی مجلس میں کہا تھا کہ اگر نماز تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھو گے تو تمہاری شادیاں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوں گی, اگر تم روزہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے رکھو گے تو تمہارے بزنس بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ روزے میں اللہ کا خیال کرنا, بزنس میں مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ مولانا اگر حرام کا حلال کا خیال کرنے لگے تو بزنس ہو نہیں سکتا. کل عاشور کا دن کتنا سیریس غم کا دن, لیکن میں نے آقا حسین کا جملہ بتایا تھا کہ آقا حسین نے کربلا کے جہاد میں یہ حرام لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے. کتنے ایسے بزنس ہوتے ہیں جس میں حرام حلال انسان کو ملا دینا پڑتا, شراب بھی بیچنا ہوتی ہے, سور کا گوشت بھی بیچنا ہوتا ہے اور حلال چیزیں. اب یہ آج کا موضوع نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے, لیکن چونکہ لشکر یزید کا جو عام لوگ تھے, عام جو سپاہی تھے, عمر سعد شمر جیسے نہیں لیکن جو عام تھے, ان کا بیسک فالٹ امام نے بتایا کہ ان کے پیٹ میں رزق حرام ہے. تو اب یہ موضوع نہیں ہے میرا, یہ ہے کہ مکمل اسلام میں داخل, ٹائم لگے گا, تم انسان ہو, شیطان بھی اسی دنیا میں, غلطیاں بھی ہوں گی, گناہ بھی ہوں گے, توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے, پروردگار کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہے, سب سے بڑھ کے شفاعت معصومین بھی تمہارے ساتھ ہے, سب سے بڑھ کے عزاداری میں تمہاری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جو رومال زہرا میں جمع ہو رہے ہیں یہ بھی تمہارے ساتھ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کے گناہ کرے. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا. اب آئیے سورہ احزاب ہی کی ایک آیت کی تلاوت کی, اور اگر کبھی مجھے موقع ملا اس مجمع کی خدمت کا وفات رسول خدا کی مجلس کے سلسلے میں, تو وفات رسول خدا کی ایک مجلس پڑھوں تب بھی اسی آیت سے بات شروع کرتا ہوں جو اب میں پڑھ رہا ہوں, اور اگر 5 مجلسیں پڑھوں 10 مجلسیں پڑھوں, یہ سورہ احزاب کی آیت ہے, وہی سورہ احزاب جو آپ کو عاشورہ کے دن پڑھنا, آیت کا ترجمہ کیا. اچھا مجھے پتا ہے 21st سینچری میں ویسٹرن کنٹریز میں رہ کر یہاں کے بچوں کو یہ چیز سمجھانا بہت مشکل ہے, یہاں کچھ ایسا مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو بچے قبول نہیں کریں. تو میں بچوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, وہ انگلش لیکچر ہو رہا ہے, میں تو بڈھوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ جو میرا اپنا ایج گروپ ہے, تو ان کو تو کم از کم ٹھیک رہنا ہے, پھر آپ بچوں پہ کام کر سکیں گے. اگر خود آپ ہی ڈاؤٹ میں ہیں تو آگے آپ کس طریقے سے اپنی جنریشن میں ایک عقیدہ ٹرانسفر کریں گے. یہ قرآن کی آیت, وما کان علم, اور عجیب آیت اس لیے کہ قرآن جتنے واجبات بتاتا ہے نا وہ عموماً مردوں کا نام لیا جاتا ہے, اس میں عورتیں آٹومیٹک شامل, نمازیں قائم کرو, اب یہ مرد اور عورت کو الگ الگ نہیں کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزے میں الگ الگ نہیں کیا, زکوٰۃ میں الگ الگ نہیں کیا, ہر آئے جگہ ساتھ ہے, صرف دو جگہوں پہ الگ کیا, ایک حجاب کے مسئلے پر. کیا ایمان لانے والوں, میں آیتیں بھی زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا. کیا ایمان لانے والے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو, اور ایمان لانے والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو, یا الگ الگ کرو, وہاں بھی ایک آرڈر آ سکتا. کیا ایمان لانے والوں آنکھیں نیچے کر لو, مرد بھی آ گئے عورت بھی آ گئے, لیکن مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے حجاب بہت اہم. اور سورہ احزاب میں ایک نہیں دو جگہ پر پہلے حجاب کا فلسفہ بتایا اور پھر ایک لسٹ بتائی کہ کن سے حجاب کرنا ہے کن سے نہیں کرنا, یہ عاشور کے دن عمل عاشور. वहां लाशें गिर रहे हैं, कासिम का बदन टुकड़े टुकड़े हो रहा है, कस्बर के कलेजे में बर्छी उतर रही है, असगर का गला छेद रहा है, और हम ये आयत पढ़ रहे हैं। इस्लाम का कोई हुक्म बगैर किसी फायदे और मसलहत के और फिलोसफी के नहीं होता। कभी अलग से ये बात सूरह हिजाब की तफसीर में आएगी। अब एक आयत ही आ रही, एक हिजाब के हवाले से आयत आई जहां मर्द अलग और हुक्म एक दिया गया। भाई ऐसा होता कि दो अलग हुक्म होते तो ठीक है, मर्दों को अलग मेंशन करो, और तो एक ही हुक्म दिया जा रहा है कि निगाहें नीची करो। क्योंकि हिजाब का मसला आता है तो लोग समझते हैं कि हिजाब खाली औरत की जिम्मेदारी है, मर्द को फ्री हैंड है, उसकी भी जिम्मेदारी, लेकिन एक अलग शब्द। और उससे पहले यह आयत आई, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, ना किसी मोमिन को यह इख्तियार या ऑप्शन है और ना किसी मोमिना को यह इख्तियार और ऑप्शन है। यह लफ्ज इख्तियार जो है उर्दू का लफ्ज, लेकिन अरबी से आया और इसमें लफ्ज यही आया, अभी सुनी आया, वमा काना लिमुमिन, किसी मोमिन को यह इख्तियार नहीं, उसका यह हक नहीं, और किसी मोमिना को भी यह इख्तियार और उसका हक नहीं, अन यकून लहुम अल-खियरा, उनको इख्तियार, खियरा इख्तियार, इख्तियार इसी से निकला। कब कहां नहीं है इख्तियार? इज़ा क़ज़ा अल्लाहु व रसूलहू अमरा, अगर अल्लाह और उसका रसूल किसी भी मामले में हुक्म दे दे, फैसला कर दे कि यह करना। अब ना मोमिन मर्द को यह इख्तियार है कि उसके अंदर कहे कि मेरी मर्जी, ना किसी मोमिन औरत जो रसूल कह दे ब्लाइंडली फॉलो करना। अब देखिए ये जुमला 21st सेंचुरी को यंगस्टर को समझाना कितना मुश्किल है, ब्लाइंडली फॉलो, लेकिन बुजुर्गों को तो समझाया जा सकता है ना कि आंखें बंद करके अमल करना, बिल्कुल वाज़े कुरान की आयत। और फिर आ जाइए उस आयत पर जिसको, अच्छा अब आप कहेंगे कि मसलन आपसे मतलब आप नहीं, अगर आप लोग होते तो इस मजलिस में बैठते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्या पढ़ूंगा दूसरा। अच्छा यहाँ तो मसला आपके पास च्वाइस भी है ना, कहीं और भी जा सकते हैं इसी प्रेमिसेस के अंदर, लेकिन आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं अच्छा ये आयत कुरान में, हमको तो पता ही नहीं, हमने कभी नहीं सुनी। यही अक्सर लोग कहते हैं ना, अच्छा खुमस भी वाजिब है, हमने तो कभी नहीं सुना, तकलीद भी वाजिब है, हमने तो कभी नहीं सुनी, फला चीज भी वाजिब है, हमने अभी तो आप इस स्टेज से गुजर चुके। लेकिन मैं तो 52 साल से जो मजलिसें पढ़ रहा हूँ तो शुरू का स्टेज यही था, लोगों को तकलीद बताते थे, लोग कहते थे आज तक हमने नहीं सुना। भाई कसूर आपका हो गया आपने नहीं सुना, या कसूर इस्लाम का हो गया, इस्लाम ने तो पहले दिन से कह दिया आपने नहीं सुना, ये आपकी गलती है ना। इसी तरह से अब ये हिजाब के मसले, हिजाब के मसले में अच्छा वो फर्स्ट कजिन भी नाम आ रहे हैं मैं, अच्छा भाई की बीवी भी नाम आ रहे हैं मैं, अच्छा बीवी की बहन भी नाम आ रहा, क्या क्या तमाशे हो चुके हैं शुरू में, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां पर एक जादू का लफ्ज था, जादू मेरिकल नहीं जादू मैजिक, वो लफ्ज कह दीजिए सारी औरतें आपके लिए महरम हो गए, कोई हिजाब हिजाब की जरूरत नहीं, हंसी कीजिए मजाक कीजिए जोक कीजिए जो दिल जाए। वो क्या है, अपनी बीवी को छोड़कर सारी औरतों को बहन बना दिया, फुला बहन वो भी सारी औरतें आपकी महरम हो गई, और औरत ने एक लफ्ज भाई इस्तेमाल कर लिया, सब भाई हो गए उसके। इंडिया और पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे है, बम्बई है कराची है, जहां पे वो बिल्डिंग होती थी बड़ी बढ़िया, जो लोग यहाँ पैदा हुए उनको तो मैं समझा भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ चूंकि ज्यादातर तो वहीं से आए हैं। दारुसलाम में भी मैंने बिल्डिंगें देखी लेकिन दारुसलाम का माहौल नहीं देखा, कराची का माहौल देखा, एक बिल्डिंग के अंदर का 50 फ्लैट है और सारी औरतें जो है ना हर आदमी के लिए महरम है और सारे मर्द हर औरत के लिए महरम है, एक भाई कहकर एक बहन कहकर, भाई भाई नहीं भाई और बहन। अब ये जो मसला आता है ना तो यहाँ पे तो आप कह देते हैं हमने आज तक सुना ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, लेकिन अब वो ये मैसेज अल्लाह ने उस आयत में दिया है जो कोई मोमिन नहीं कह सकता मैंने आज तक ये आयत नहीं सुनी। हाँ वो ये कहेगा कि मुझे इसका तर्जमा, मुझे इसकी तफसीर नहीं पता थी, इसकी तफसीर नहीं पता थी। भाई जब आयत आपने सुन ली तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पूछते कौन सी आयत, इन्ना लाहा व मलाइकतो यसल्लून अला नबी, ऐ मोमिनो अल्लाह दुरूद भेजता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान लाने वालों तुम भी दुरूद भेजो, ये है ना हुक्म। लेकिन क्या आयत यहाँ पे रुक गई, खत्म हो गई आयत, सल्लू अलैहि पे आयत कंप्लीट हो गई, बस सल्लमु तस्लीमा भी आगे शामिल। तो कभी आपने सोचा कि एक आयत में दो हुक्म दिए बिल्कुल साथ साथ दिए हैं, ऐसा भी नहीं कि एक आयत के बाद वाली आयत में हो, नहीं उसी आयत में है, आधे हुक्म पे अमल करते बाकी आधा किया। इन्ना अल्लाह व मलाइकतुहु के आखिर में या अय्युहल्लज़ीना आमनु के बाद ऑर्डर आ रहा है ना सल्लू, दुरूद भेजो, आप दुरूद भेज देते लेकिन उसके साथ कहा गया, बल्कि आप दुरूद भेजते हैं तो इंतजार करते हैं कि पढ़ने वाला आयत मुकम्मल कर ले। ठीक है सल्लू पे जबान, जरा सी मूवमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन वेट होता है कि सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। सल्लमु तस्लीमा किसे कहते हैं, कभी सोचा है? आप कहेंगे हमने आयत आज तक नहीं सुनी। कौन कहे सल्लमु तस्लीमा, इसका मतलब क्या है? दुरूद भेजो जबान से, सल्लमु तस्लीमा, तस्लीम अरबी में भाई सल्लमु तस्लीमा, इस्लाम, ये सब एक लफ्ज है। इसका मतलब है टोटल सबमिशन और टोटल सरेंडर। उन पर दुरूद भी भेजो और उनके आगे अपने आप को टोटल सबमिट कर दो। ये उसी आयत में कहा गया जो आपने जब से माँ के पेट में आप आए हैं उस वक्त से लेके कब्र में जाने तक ये आयत आप सुनते रहते हैं, उसी में यही आर्डर सल्लमु तस्लीमा, जो उन्होंने कह दिया। आगे इसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई, ये है कंप्लीट इस्लाम, जो मेरा मौजू चल रहा था। लेकिन इसके हवाले से दो छोटी सी बातें अर्ज करना। नंबर एक, बातें बहुत सारी, नंबर एक, इसके लिए जरूरी है कि जहां से वो हुक्म आ जाए उसको उसी तरह माने, अपनी अकल न लगाए। अब बताइए 21st century के इस बच्चे को जो यहाँ के स्कूल में पढ़ा और यहाँ के कॉलेज में पढ़ा है, आप कह सकते हैं? आपको पता है कि रसूल ने कह दिया तो बस आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है 52 years का, आप में से बहुत सौ की एज भी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनके बाप की भी इतनी उम्र ना हो जितना मेरा तजुर्बा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि वेस्ट में आके लोगों ने बहुत मेहनत की है अपने फैमिली पर। ये इतनी मेहनत दारुसलाम में नहीं की जाती थी, इतनी मेहनत कराची में नहीं की जाती थी, इतनी मेहनत बम्बई में नहीं की जाती थी, इतनी मेहनत लखनऊ में नहीं की जाती थी, इतनी मेहनत लाहौर में नहीं की जाती। वाकई लोगों को मसले की अहमियत पता है, वो अपनी हद तक कोशिश कर रहे। और आपको मालूम भी कि अब ये पूरी सोसाइटी अगेंस्ट है, बच्चा कहाँ कहाँ आप बच्चे को बचाएंगे, रहेगा तो इसी सोसाइटी की। आजा खानों को ये सेंटर्स को बहुत गनीमत समझ, यही है कि जो इस वक्त बहुत ज्यादा आपके बच्चों के लिए एक प्रोटेक्शन का जरिया है। और वाकई खुशी होती है वेस्ट के कुछ सेंटर्स देखकर, जिसमें ये भी शामिल है। अभी मुखी साहब मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो मेरी भी जिम्मेदारी, मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह, जो बंदों को थैंक यू ना कहे वो कभी अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, कि मैं भी शुक्रिया अदा करूं जमात का जिसने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, मेरे पास, मेरे जहन में, अब मैं कुछ बातें नहीं कहना चाहता, यह आने से पहले बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं हेजिटेट कर रहा था, आप पूछिएगा, बहुत हेजिटेट कर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। और बहुत मैंने, अब ये लफ्ज अच्छा तो नहीं है, लेकिन इंजॉय किया अपने इस विजिट को, और मैंने सोचा कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पूरा तआवुन जमात से भी मिला, आपसे भी मिला, लोगों से मिला, सब कुछ अपनी जगह। वाकन ये जिंदगी का मेरा एक तजुर्बा था, क्योंकि बाहर जगहों पे आदमी जाता है उसको कुछ नहीं पता होता क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक अंदाजा था कि बुरा होगा। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर था कि कई साल से मैं डिले कर रहा था, लेकिन आ गया तो अब सोच रहा हूँ कितना अच्छा मेरा डिसीजन था। आपका भी शुक्रिया, जमात का भी शुक्रिया। लेकिन असल मौजू पे आ जाओ कि बाकी जो मैंने यहाँ एक्टिविटीज देखी, जो करबला का मैसेज है, और करबला से पहले ये रसूल खुदा की तबलीग का मैसेज, अब ये टाइम नहीं है कि मैं इन चीजों की तफसील में जाऊं, जो रसूल खुदा की स्टार्ट तबलीग स्टार्ट है, जिसका एक जुमला मैंने शायद शब आशूर पढ़ा कि अली के साथ तबलीग की, अली को रसूल से अलग कर दें या फासला डाल दें तो रिसालत जख्मी होती है। वो पैगंबर का तरीका हुसैन ने करबला मिली, और वो यहां मैंने देखा, वो क्या तरीका कि सारे लोग माशरे के, सोसाइटी के, कम्युनिटी के सब लोग मिलकर हिस्सा लेंगे। न मर्दों की कोई अलग अकेले जिम्मेदारी है, न औरतों की अकेले जिम्मेदारी है, न यूथ की अकेले जिम्मेदारी है, हर आदमी। पैगंबर ने यही किया, हुसैन ने यही किया, मर्द भी गए, औरतें भी गए, बच्चे भी गए, बूढ़े भी गए, सब गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो 10 दिन मैंने माहौल देखा, मुझे इसके बाद का नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा साल ये होता रहा होगा, खास तौर पर आपके बच्चे। अब वो जो प्रोजेक्ट बना के रखा है करबला का, दिल खुश हो गए, क्योंकि आज का बच्चा जो है ना वो मजलिस से वो चीज नहीं समझ पाता, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं इन्होंने मजलिस से ही सब सीखा कि करबला क्या थी, खेमे कहाँ थे, दरिया कहाँ था, हुसैनी लश्कर कहाँ था, यजीदी लश्कर कहाँ था। लेकिन आज ये मुमकिन नहीं, इतना ज्यादा हमारे बच्चों को, हमारी यानी अपनी शिया कम्युनिटी ने, पूरी दुनिया के बच्चों को इतना ज्यादा इस विजुअल पे डाल दिया गया, और वो भी इस तरह से डाला गया है कि उनका दिमाग, अब ये यूट्यूब और टिकटॉक ने, यूट्यूब से भी ज्यादा टिकटॉक, इंस्टा सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाया कि 10 मिनट से ज्यादा कोई चीज सुन नहीं सकता बच्चा। बच्चे तो बच्चे, बड़ों की भी हालत है, बड़े तो बड़े, मुझ बुढ़ों की भी हालत है, कभी कोई इंटरेस्टिंग किस्म की स्पीच आ जाए, पता चले 40 मिनट की है, 2 मिनट के बाद हम मन कर देते, और 6 मिनट का क्लिप आ जाए, 5 मिनट का क्लिप आ जाए, टिकटॉक है तो 1 मिनट का क्लिप आ जाए, वो शौक से सुनते हैं। ये इंसान की जो सोचने की ताकत है, कंसंट्रेशन, वो कम, उसका ड्यूरेशन कम कर रहे हैं। उसमें यही चीजें काम आती है कि एक निगाह डालेगा वो, उसकी समझ में पूरा जिहाद करबला आ जाएगा, एटलीस्ट जहन के अंदर स्केच बन जाएगा। बड़ी मेहनत करते होंगे मेरा अंदाजा, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन ख्याल इस बात का करना कि अभी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहला स्टार्ट यहां से लिया जाता है कि जो रसूल कह दे आगे, तुम्हें इसके अंदर अपनी मर्जी नहीं चलाना। अच्छा, मैं इसकी एक दो मिसालें दे दूं, बहुत जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है आज मेरे पास, बहुत जल्दी जल्दी। जो लोग जिनकी मैं मिसाल कोट कर रहा हूं, उनकी नीयत कोई बुरी नहीं, सब अच्छी नीयत वाले, लेकिन अपने जहन से, अपने अकल से, अपने लिमिटेड विजन से उन्होंने इस्लाम को समझा। जब आदमी अपने लिमिटेड विजन से समझता है, तो जितना उसके सामने होता है ना, वो उसी को इनफ समझता है। फारसी का सबसे बड़ा पोएट कौन? अब एक पोएट तो किसी जबान में भी बड़ा नहीं होता है, 2-3-4 के नाम है, उनमें से एक है मौलाना रोम। उन्होंने एक मसनवी लिखी है, उसमें एक वाकया कोट किया, बहुत मशहूर वाकया, कि एक इलाके में हाथी आ गए। वहां वालों ने आज तक हाथी देखा ही नहीं था, पहली बार हाथी आ गया। अब हाथी आ गया तो सारा शहर दौड़ के गया, हाथी 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 देखो। ये मुआविया की डर्टी पॉलिटिक्स थी। मस्जिद कूफा की आप ज़ियारत करते हैं तो आपको जरूर बताया जाता होगा कि जैसे मक्के में खाने काबा में एंटर हो तो बाबू सलाम से दाखिल होना मुस्तहब, जो आजकल पॉसिबल नहीं रहा। पॉसिबल तो है, बहुत डिफिकल्ट हो गया। मदीने में बाबे जिब्राइल से एंटर हो मस्जिद में, और कूफे में बाबे सोबान से दाखिल हो, मुस्तहब है। अब वहां से लेडीज को नहीं जाने देते, क्योंकि लेडीज जेंट्स को अलग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाकये से सोबान अरबी में कहते हैं अजदहे को पाइथन। अब वो बहुत मशहूर वाकया है कि वहां से एक अजदहा अंदर दाखिल होके सीधा बिल्कुल एंड में मस्जिद कूफा में मौला के पास मिंबर के सामने जाके खड़ा हुआ, और उसने मौला से कुछ सवाल किए। ये वाकया वहां ज़ियारत में बहुत सुनते हैं। चुनाचे जिस डोर से वो एंटर हुआ था, उसका नाम था बाबे सोबान, अजदहे का या पाइथन का दरबार। अब जब ये वाकया मशहूर हुआ तो मुआविया घबरा गया, ये तो अली की फजीलत सामने आ रही। उसने वहां एक हाथी लाके बांध दिया। अच्छा, वहां कूफे वालों के लिए हाथी बहुत बड़ी चीज। आपने अफ्रीका में बहुत हाथी देखा होगा, शायद किसी ने शिकार भी किया हो, तो इंडिया में भी हाथी होता है मसलन, लेकिन कूफे वालों के लिए हाथी बड़ी चीज थी। अब जो हाथी दरवाजे पे बांधा तो सबकी अटेंशन उधर हो गई, हाथी हाथी हाथी, वो अजदहे को भूल गए। उस दरवाजे का नाम भी चेंज हो गया, नाम हो गया बाबुल फील, हाथी वाला दरवाजा। ये मुआविया की पॉलिसी, अटेंशन डाइवर्ट करो, उससे ज्यादा कोई नई चीज लाकर। मैं ये नहीं कहता कि आज के लोग, आज यही पॉलिसी है दुश्मनों की, लेकिन उसका भी हिस्सा। अय्याम अज़ा आते हैं, क्रिकेट के मैच शुरू हो जाते हैं, यहाँ से तवज्जो वहां होगी। अय्याम अज़ा आते हैं, फीफा का वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है, यहाँ की तवज्जो वहां होगी। चले 2 महीने 8 दिन मुश्किल है, लेकिन शब आशूर में लोग मैच देखते हैं, आशूर के दिन भी देखते हैं। खैर, तो खुलासा यह कि तवज्जो हटाने के तरीके होते हैं। हाथी लाके बांधा। अब आप देखेंगे अभी, बल्कि हत्ता शेख अब्बास कुम्मी की मफातिल जना देख लीजिए, वो कितनी 100 साल पुरानी किताब है, 1360 हिजरा में उनकी मौत हुई, वफात हुई है, तो विदिन 100 ईयर। उसमें भी लिखा है कि मस्जिद कूफा में बाबे फील से जाओ, हाथी वाले दरवाजे। ये इतना मशहूर था कि अगर वो लिखते हैं कि अजदहे वाले दरवाजे से जाओ, तो आपको पता ही नहीं चलता ये दरवाजा है कहाँ पे। वो तो सद्दाम के खात्मे के बाद इसका पुराना नाम आया। तो खुलासा ये कि हाथी किसी इलाके में पहुंच जाए, नई चीज होगी तो सबकी अटेंशन उधर हो जाएगी। अंधों ने, कुछ अंधे थे, उन्होंने महसूस किया कि पब्लिक दौड़ के जा रही है, कहां जा रही है, कहा हाथी आया। कहा हाथी किसे कहते, अब अंधे को कैसे आप समझाएंगे। लोगों ने कहा चलो तुम्हें हाथी के पास खड़ा कर देते हैं, ले जाके खड़ा कर दिया। 8 अंधे थे, 4, 5, 6, टाइम नहीं है मेरे पास। एक अंधे ने हाथी के पैर जो होते हैं बड़े बड़े, उसको छुआ। अच्छा, हाथी तो पिलर की तरह होता। दूसरे ने हाथी के जो पेट होता है उसको छुआ, तो नो तुम झूठ बोल रहे, हाथी तो वॉल की तरह होता। किसी का हाथी की सूंड पे हाथ गया, उसने कहा नो तुम दोनों झूठ बोल रहे, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तो अब जितना हिस्सा हाथी का उनके हाथ सामने आया, उससे उन्होंने हाथी को पहचाना और सबने गलत की। अब हमारा भी यही मसला है, तो पूरा इस्लाम हमको बताओ और फिर हम कोई फैसला करें, तो हमारा डिसीजन सही होगा। हमारे सामने तो इस्लाम का एक लिमिटेड हिस्सा है, जितनी हमारी नॉलेज उतना हमारा विजन। फिर अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो हमेशा गलत होगा। आप कहेंगे जी वो हाथी तो दीवार है, वो कहेगा झूठ बोल रहे हो, हाथी तो पिलर है, वो कहेगा झूठ बोल रहे हो, हाथी तो रस्सी और रोप की तरह से है। तो जो इस्लाम पूरा समझता, अच्छा मासूमीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये तो कहना भी उनकी इंसल्ट है, कम अज कम गैर मासूम है, सबसे ज्यादा इस्लाम को समझने वाले का नाम है मर्दे वक्त। वो जो आपको विजन देगा, वो देगा वो पूरा इस्लाम उसके सामने, हमारे सामने इतना सा, हर एक आदमी के सामने एक एक इस्लाम, उसका नतीजा क्या निकलता है? इंटेंशन ठीक, लेकिन ये तो कहिए कि बड़ी मुश्किल से अब ये मसला खत्म हुआ, लेकिन इस साल भी पाकिस्तान में ये इशू बना। क्या इशू बना? कि जुमे के दिन वहां अशूरा था, यानी आज का दिन, तकरीबन सारी दुनिया में फ्राइडे था सिवाय नॉर्थ अमेरिका। कितना बड़ा इशू बना कि नमाज जुमा नहीं होना चाहिए, नमाज जुमा तो खुशी की नमाज है, आशूर के दिन खुशी कैसी? बाकायदा जो उलमा नमाज जुमा पढ़ा रहे हैं, जो सेंटर नमाज जुमा कर रहे हैं, उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा मीडिया पर। अब वो जो ये एतराज कर रहा है वो मोहब्बत अदादारी और मोहब्बत अहले बैत में कर रहा है, लेकिन कितना नॉनसेंस किस्म का एक प्रोपेगेंडा। मेरा ताल्लुक इंडिया के इलाके यूपी से, मैंने देखा नहीं है लेकिन बुजुर्ग तो वहां से आए, तो घर के अंदर तो वही माहौल होता है ना जहां से इंसान के बुजुर्ग आते हैं। अब आपके बच्चे भी बाज़ औक़ात घबराते होंगे कि डैडी आप दारुसलाम में नहीं है, आप लंडी में नहीं है, आप मुंबासा में नहीं है, आप टोरंटो में, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आपसे यहाँ हो ही जाती होंगी। और जिन बच्चों की माँ नहीं, नानी और दादी जिंदा, तो वही पुरानी चीजें। तो अब यह है कि मेरे यहाँ भी कुछ पुरानी चीजें, हमारे यहाँ यूपी या खास लखनऊ, मैं तो लखनऊ का पक्का पक्का लखनऊ पक्का पक्का, ये जुमले का भी एक बैकग्राउंड है, टाइम नहीं। तो खैर खुलासा यह है कि हमारे यहाँ बस तरीका था, और अल्लाह ने बहरहाल कुछ बुजुर्गों को लंबी उम्र दी, मैंने अपनी परनानी को भी देखा, मैंने नानी को भी देखा, मैंने वालिदा, तो ये तीन जनरेशन बुजुर्गों की थी। हमारे यहाँ 2 महीने 8 दिन में मसलन मछली नहीं खाते, डॉक्टर हमसे कह रहे हैं जी आपके गिजा में हफ्ते में 3 दिन मछली होनी चाहिए, वो ओमेगा क्या वो चलाते हैं, खैर तो खुलासा ही नहीं खा सकते। यानी मैं अपने वालिदैन की, मैं अपने बुजुर्गों की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आम माहौल कि वो कह देंगे भाई सुअर खा लो कोई हरज नहीं, मछली नहीं खाना, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप इसके वर्डिंग को ना पकड़ लीजिए। इसी तरह हमारे यहाँ कोई फ्राई चीज नहीं पक सकती 2 महीने 8 दिन की, जो बात पहले 10 दिन हम लोग बिस्तर पे सो ही नहीं सकते, जमीन पे सोते मसलन। तो अब ये सारी चीजें थी, उसमें एक चीज ये है कि आशूर के दिन नहा नहीं सकते, कहीं नहाना धोना ये तो जरा खुशी की अलामत, जुमे के दिन आ गया था गुस्ल जुमा भी नहीं कर सकते। उसले जुमा जो इतना अहम है कि बाद उलमा बल्कि अच्छे खासे उलमा इसको वाजिब भी समझते आए, ठीक है हमारे करंट मराजे वाजिब नहीं समझते, लेकिन कितना अहम नहीं करने देते उसले जुमा, अगर आशूर कभी जुमे के दिन आ जाए। अब ये वो अपनी मोहब्बत में कह रहा, वो अहले बैत से अकीदत में कह रहा, उसे उसले जुमा से कोई इख्तिलाफ नहीं, कहता पूरा साल उसले जुमा करो, आज नहीं आज आशूर। अच्छा अब इससे ज्यादा मैं मिसाल वो दे दूं जो आपके काफिलों में भी होती है टोरंटो, अभी तो आप हैरान होंगे कि नमाज जुमा बंद कर दी आशूर के दिन, खुसरे जुमा बंद कर दिया, ये कौन लोग हैं? लेकिन अब आइए मिसाल दीजिए, क्योंकि मैंने टोरंटो के एक टोरंटो से मतलब खाली टोरंटो नहीं है, तकरीबन सारे काफिले, लेकिन उसमें आपका इलाका भी करबला जाता है, जो ऑर्गेनाइजर है ना वो समझाता है। और बात कुछ इमाम की हदीसों से कि भाई यहाँ आ रहे हो तो इस तरह आओ जैसे किसी मरने वाले के घर जाते हो, गोश्त ना खाना, अच्छी चीजें, वो सारी चीजें होती है, सब चीजें। मैं किसी बात पे क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता हूँ इमाम की हदीस है, लेकिन उसमें यह भी कहते हैं कि करबला वाही जगह है जहां आओ तो नहाना नहीं है, बल्कि इस तरह आओ कि बाल बिखरे हुए हैं, आंसू बह रहे हैं, कपड़े मैले हैं, गरेबान भटा हुआ है, रोते हुए आओ, नंगे पैर आओ, जैसे मरने वाले के घर जाते हो, खास तौर पर गुस्ल तो करना ही नहीं। कितने मोमिनीन को करबला के गुस्ल के सवाब से महरूम किया गया, जबकि खुद इमाम मासूम का तरीका हर किताब में लिखा है कि जब करबला आते हैं पहले फुरात के पानी से गुस्ल करते हैं, फुरात के पानी से, और उसके बाद करबला में एंटर होते हैं, लेकिन बाकायदा लोगों को रोका जाता है, हाँ नजफ में जा रहे हो गुस्ल करके जाओ हरम, हाँ काजमैन जा रहे हो गुस्ल करके जाओ, सामर्रा जा रहे हो गुस्ल करके जाओ। अब ये जो गुस्ल से रोक रहा है, भाई किसी वाजिब काम से नहीं रोक रहा, लेकिन एक इतना सवाब वाला काम है कि खुद इमाम मासूम करबला की जियारत पहले, सबसे पहले छठे इमाम के जमाने में पब्लिक में आई, इससे पहले चौथे और पांचवें इमाम तो रात के अंधेरे में आते थे छठे इमाम, तो तमाम तारीखों में लिखा है कि वो रुकते थे करबला की बाउंड्री पर, फुरात का पानी लेके गुस्ल करते थे, फिर करबला में एंटर होते। کیونکہ کربلا طہارت چاہتی ہے, کربلا پاکیزگی چاہتی ہے. کربلا کا مقصد یہ ہے کہ انسان امام کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ جائے. غسل سے زیادہ انسان کی روح کو پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں, لیکن وہ روک رہے, اور وہ دشمنی میں نہیں روک رہے, وہ محبت امام میں روک رہے, وہ محبت آزاداری میں. تو سارے پرابلم کہاں, کہ محبت ہے اپنی جگہ, عقیدت ہے, اور شاید ہم سے بھی زیادہ ان کو محبت ہے, لیکن چونکہ پورا دین تو نہیں معلوم نا, ان کا ویژن بہت لمیٹڈ ہے. انہوں نے اپنی لمیٹڈ نالج کے ساتھ اپنی لمیٹڈ عقل کو ملایا, اور اس کے نتیجے میں جو مکسچر تیار ہوا وہ دین سے بھی ٹکرا جاتا ہے کبھی کبھار. یہی وجہ, یا نہیں یہ بھی جو ہے نا, یہ اردو والوں کو کہہ رہا, یہی وجہ, یہی جب کہتے ہیں تو پھر ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آقا حسین کے جہاد کا جو پرپز آیا ہے زیارت عاشورا, نہیں زیارت اربعین. زیارت اربعین بہت امپورٹنٹ زیارت. مومن کی پہچان کیوں بتائی گئی؟ میں توہین کی نیت سے ایک جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, کہیں آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے. زیارت عاشورا کو مومن کی پہچان نہیں بتایا گیا, زیارت وارثہ کو مومن کی پہچان نہیں بنایا, زیارت امین اللہ کو مومن کی پہچان نہیں بنایا, حتیٰ زیارت آل یاسین جس کی بہت امپورٹنس ہے اس کو مومن کی پہچان نہیں قرار دیا, زیارت اربعین کو. زیارت اربعین میں حسین کے پورے مشن کا خلاصہ ہے, لَيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا حسین نے کربلا کا اتنا بڑا جہاد کیا تاکہ عبادک, مسلمان, مومن نہیں مسلمان نہیں, جتنے تیرے بندے دنیا میں, ان کو جہالت اور اگنورنس سے نکالا جائے. اب اس میں عقیدے کی جہالت بھی آتی ہے, اس میں عمل کی جہالت بھی آتی ہے, اس میں فقہ کی جہالت بھی آتی ہے. یہ مقصد ہے کربلا, آپ کا ویژن وسیع کرنا. اچھا اب یہ مقصد ہے کربلا تو یہیں پہ رک کر ایک بات اور عرض کر دوں کہ کربلا کے جہاد کا خلاصہ کیا نکلا, انسان کو نالج دی جائے. دیکھیں یہ زیارت اربعین کا جملہ ہے, بلکہ عاشورہ کی بھی ایک دعا میں یہ جملہ آیا ہے. عاشورہ کی بہت دعائیں ہیں, عاشورہ کی ایک دعا میں جملہ آیا ہے, لیکن چونکہ وہ دعا مومن کی سائن آف مومن نہیں بتایا, اس لیے میں اس کو دلیل میں نہیں لا رہا ہوں. زیارت اربعین کو دلیل میں لا رہا ہوں, وہ سائن ہے ایمان. اس میں یہ آیا تھا کہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے, یعنی علم دیا جائے. یہ کربلا کے جہاد کا مقصد تھا. بھائی آج سے آخری ایام اعظم کی آخری تاریخ تک آپ کس کا غم کرتے ہیں اور کس کو یاد کرتے ہیں؟ زینب کبریٰ کو نا. پورے جہاد میں زینب نے تلوار چلائی, اب جو جہاد شروع ہوا کوئی نیزہ چلایا ہے, کوئی تیر چلایا ہے, صرف لوگوں کو نالج دی, لوگوں کو اگنورنس سے نکالا ہے. زینب کا پورا جہاد زینب کے خطبے, لیکن اب یہ نالج کہاں ملتی؟ دیکھیں اب ذرا جو میرا موضوع بننے والا تھا, لیکن اب کیا کروں, ٹائم ختم ہو گیا, مختصر بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ جہاں یہ جو نالج دی ہے, نالج کہاں ملتی ہے؟ نالج کسی کیمسٹ کے یا فارمیسٹ کے یا شاپرز ڈرگ مارٹ میں ملتی ہے کہ گئے آپ نے بوٹل لی, دو کیپسول کھائے, پوری نالج چلی گئی. نالج پوپائی دا سیلر نہیں ہے کہ آپ نے وہ ایک مرتبہ اسپینچ کھایا اور اتنی طاقت آ گئی. نالج کسی سپر مارکیٹ میں نہیں ملتی. نالج جو ہے وہ کسی مثلاً اسٹورس میں, ڈپارٹمنٹ اسٹور میں, ہائپر اسٹور میں نہیں ملتی. نالج جب ملے گی, کہیں رکھی ہوئی نہیں, نالج جب ملے گی مرجے کے ذریعے ملے گی. تو آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم کو نالج نہ ملے, یعنی ہم کربلا کے جہاد میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, ہمارا رول نہ ہو, تو کربلا کا جہاد ہے لوگوں کو نالج دو اور ویژن دو. وہ ملے گا تھرو مرجے کا, مرجے کو ختم کر دو, بہت آسان ہو جائے گا کام. کہاں سے لیں گے یہ ویژن, کہاں سے لیں گے یہ نالج؟ پھر خود سے سوچیں گے تو یہی ہاتھی کی طرح ہوگا, کسی کو اسلام پلر لگے گا, کسی کو اسلام وال لگے گا, کسی کو اسلام روپ لگے گا, صحیح اسلام کسی کو نہیں ملے گا. آج جو مرجعیت کے خلاف اتنا زبردست پروپیگنڈا ہو رہا, اور یہاں رک کر, اب میں دیکھیے الگ الگ باتیں ہیں, جلدی جلدی مکمل کرو. یہاں رک کر وہ میسج میں ریپیٹ کر دوں جو میں نے 9 محرم کو شروع کیا, اور وہ یہ ہے کہ اب رسول کا طریقہ کیا ہے, اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ اہل بیت اور رسول کا طریقہ ہے کہ جو دشمن ٹول لے کر آئے یا ویپن لے کر آئے یا ہتھیار لے کر آئے, اس کو اسی کے ٹول سے جو ہے شکست دو. میں نے مثال میں وہ 8 امام کی حدیث دی تھی کہ موسیٰ نے جادوگروں کو اس معجزے, عیسیٰ نے میڈیکل سائنس والوں کو اس معجزے سے, رسول نے عرب کو بہت اپنی زبان اور شاعری تو اسی معجزے سے. یہ طریقہ قیامت تک کے لیے. اور اس وقت کا زمانہ کیا, اس وقت کیسے ہم کو یا ہمارے بچوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے؟ مرجعیت تو اس لیے آ گئی کہ وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور بھی چیزیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ بچوں پہ کتنی محنت گھر میں کرتے ہیں, جہاں اسکول گئے اور آپ کے ہاتھ سے نکلا, جہاں وہ سوسائٹی میں پہنچے آپ کے ہاتھ سے نکلا, दो साल के, चार साल के, पांच साल के बच्चे को आप घर में रख सकते हैं, 16 साल के, 18 साल के बच्चे को नहीं रख सकते। ये नहीं कहिएगा कि जी कवानीन ने, कवानीन की वजह से नहीं, ये बच्चा बड़ा होता है आपके कंट्रोल से निकलेगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, टाइम बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा है, जल्दी से एक छोटी मिसाल, ये कुरान का फार्मूला और मसाइल। छोटी मिसाल क्या, मासूमीन, आइम्मा मासूमीन। परसों भी ये बात, यानी शबे आशूर, मैंने जरा लाइट वे में कही थी, अब बहुत सीरियस कह रहा हूं। लाइट वे में क्या कहा था कि रसूल खुदा ने, एक रोल मॉडल है ना, तो हमको बताया कि बुरी बीवी के साथ भी कैसे लाइफ गुजारना है, एक एग्जांपल सेट की। अब आई मासूमीन, मासूमीन के घर में क्या उनकी औलाद खराब नहीं हुई है? और सबसे ज्यादा मासूमीन की, यानी मासूम का मतलब इमाम का रियल बेटा, हकीकी बेटा, अब वह इतना गुमराह हो गया कि इमाम का अपना बेटा इमाम के अगेंस्ट है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन सी, और जिसमें कोई डाउट नहीं, कहा जाता है 10वें इमाम के बेटे जनाब जाफर कज़्ज़ाब का लकब है, उन्होंने 12वें के खिलाफ इमामत का दावा किया, लेकिन वो जरा कंट्रोवर्सी कि वाकान वो दिल से इमाम के अगेंस्ट है या सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कि अब्बासी मेरी तरफ आ जाए, बहुत लंबी बात हो रही। लेकिन एक रियल एग्जाम्पल है कि इतनी मुखालिफत किसी ने नहीं की, और वो है छठे इमाम के पोते मोहम्मद इब्ने इस्माइल, और इतना उन्होंने छठे इमाम तक चला सिलसिला, उनको तो माना, साथ में कोई इतना नहीं माना, और ऐसा चला कि वो आज तक उनके बना जो बोए हुए बीज हैं वो आज तक फ्रूट दे रहे हैं। ये सगे भतीजे हैं 7वें इमाम के और सगे पोते हैं 6वें इमाम, इस्माइल के बेटे हैं, सब हर एक को पता है। तो अब हुआ ये, अच्छा ये तो बहुत मशहूर, इन्हीं के साथ इनके चचा अब्दुल्ला अफ्ताह थे, ओहो उन्होंने भी गजब उठाया, क्योंकि अब्दुल्ला अफ्ताह का फिरका बना, बहुत स्ट्रांग हुआ, फिर खत्म हो गया। इसलिए उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, मोहम्मद इब्ने इस्माइल मैंने इसलिए कोट किया कि आप अच्छी तरह जानते हैं, आप में से बहुत से ऐसे हैं जो उस मजहब से इसनाशरी बने, लेकिन अब्दुल्ला अफ्ताह, और अब्दुल्ला अफ्ताह ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है मराजे के लिए। क्यों प्रॉब्लम है? छठे इमाम के बड़े क्लोज सहाबी, मैं मिसाल के तौर पर जुमला कह रहा हूं, सलमान और फारसी और अबू ज़र के स्टेटस के सहाबी, वो भी बहकर इनको मानने लगे थे इमाम, और जितने अरसे ही जिंदा रहे, बहुत ज्यादा नहीं रहे, फिर तौबा करके सातवें के पास आए। अब मराजे के लिए मसला क्या बना? ये सहाबी सलमान के स्टेटस का, सलमान नहीं है स्टेटस का, इसने एक हदीस नकल की, चेक करना पड़ता है कि उस जमाने में उसने ये हदीस सुनी थी जब वो इमाम को मानता था, या जब बीच का पीरियड आया था जब वो अब्दुल्ला अफ्ताह को मान रहा था, या उसके बाद का है जब तौबा कर ली। आज 1300 साल के बाद किसी हदीस की डेट मालूम करना, और एक हदीस नहीं, लेकिन अब्दुल्ला अफ्ताह छठे इमाम की जिंदगी ही में ये रास्ते से हट गए। मोहम्मद इब्ने इस्माइल तो दादा के मरने के बाद फिर हटे, लोगों ने कहा छठे इमाम से मौला आपका बेटा, कहा हाँ। ये कुछ गुमराह फिरकों में उठने बैठने लगा है, मैं इसको रोकता और समझाता हूँ, ये मेरी बात नहीं मानता, आपका बेटा एग्जाम्पल नहीं है, इमाम का अपना बेटा, हकीकी बेटा, सगा बेटा और बड़ा बेटा, साथ में इमाम तो छोटे थे। और इमाम क्या कह रहे हैं? इमाम ये नहीं कह रहे कि भाई वो शैतान ने उसको बहका दिया बहके, नहीं कह रहे, ये सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, कुछ ग्रुप्स छठे इमाम के जमाने में थे जो लोगों को मिसगाइड करते थे, वो उसमें बैठ रहा, वो सर्किल के अंदर मूव करता, मैं कोशिश करता हूँ, वो मेरी बात नहीं मानता। अच्छा अब इसकी बहुत सारी रीजन है, लेकिन हमारे और आपके लिए ये एक हमको मोरल की पावर देता है कि इमाम की कोशिश के बाद भी उनका बेटा उन लोगों में बैठने लगा, आज भी यही। आप पूरी कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन आपका बच्चा आप जेब में तो नहीं रखेंगे ना, वो सोसाइटी में उठेगा बैठेगा, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जॉब का माहौल है, बाहर का माहौल। तो अब हमारा काम है कोशिश कर रहे, और उसके अंदर इस वक्त मैं फिर आप बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरे शुरू के जुमलों की वजह से, बस मैं आ रहा हूँ मसाइल पर। और मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि कुछ मैंने सोशल मीडिया और टिकटॉक और इंस्टा और इसके खिलाफ कुछ जुमले कहे थे, क्योंकि उसकी खराबी बहुत बड़ी, तो लोग ये समझे कि मौलाना इसको हराम कह रहे। तो अब ये तो सब लोग तो, बल्कि मेजोरिटी तो हमको इतना नहीं मानेगी, लेकिन जो कुछ मानने वाले थे उन्होंने कहा मौलाना क्या ये छोड़ दे, क्वेश्चन आंसर सेशन में जाइए, ये सवाल आया। अब कुरान ने इसमें एक बहुत अच्छा फार्मूला बताया, यानी कुरान का हर फार्मूला बहुत अच्छा है, मगर ये एक्सट्रीम मिसाल दी है कुरान ने कि इसके बाद अब चैप्टर क्लोज। यस अलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, अय हबीब लोग आके तुमसे सवाल करते हैं कि शराब यानी वाइन और मैसेर यानी जेमली, इसके बारे में पूछते हैं कि ये इसका क्या हुक्म है। कुरान ने क्या कहा, फी हिमा इस्मुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास, इसमें गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन लोगों के लिए फायदा भी है। शराब की तारीफ कोई शराबी नहीं कर रहा, कुरान कर रहा। गैम्बलिंग की तारीफ कोई गैम्बलर नहीं कर रहा, कैसीनो में जाने वाला कुरान कर रहा। का इसमें गुनाह भी है और इसमें फायदा भी। इस्मुहुमा अकबरो मिन नफ़िहिमा, इसके गुनाह ज्यादा बड़ा है, इसका फायदा कम है, इसलिए इसको हराम किया गया। फार्मूला है, जहां पे फायदा ज्यादा हो नुकसान कम हो वो चीज आपके लिए इजाजत है, जहां पे गुनाह बड़ा हो नुकसान फायदा कम हो वो चीज आपके लिए हराम। शराब की मिसाल दी, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत से लोग आते हैं मौलाना आप लोग कहते हैं गाना हराम, अरे फुला फुला बीमारी का इलाज गाने से हो रहा हो। कुरान ने जब शराब के लिए कहा कि इसमें फायदा है तो गाना तो बहुत छोटा गुना। आज तो एक रिसर्च मैंने देखी कि मौलाना वो सुअर के गोश्त के भी इतने फायदे, जबकि कोई फायदा किसी की समझ में नहीं आ रहा। म्यूजिक का फिर भी फायदा, गाने का फिर भी फायदा, लेकिन मैंने कहा होगा फायदा, लेकिन मसला ये जो कुरान ने फार्मूला दिया कि हाँ फायदा होगा, गुना बड़ा है कि फायदा, नुकसान ज्यादा है कि नफा, यही आज के मीडिया का मसला। अब आपको देखना है इसका नुकसान ज्यादा है कि फायदा ज्यादा। अगर इसको आप दीन के लिए इस्तेमाल करें, हमारे बच्चे जो इतने एक्सपर्ट है मीडिया में वो इसी को दीन के लिए इस्तेमाल करें तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। और अगर वो इसी को उन चीजों के लिए इस्तेमाल करे कि घर टूट रहे हैं, लड़कियां भाग रही हैं, बीवियां तलाक ले रही हैं, शौहर दूसरी औरतों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर इसके बाद पूरा गुनाहों का सिलसिला, अब देखे टाइम नहीं तो फिर ये हराम, और फिर ये हराम। यानी एक ऐसी चीज है कि जो हर इंडिविजुअल के हालात के ऊपर, और जैसा मैंने कहा कि इसके तीन चीजें, नंबर एक ये कि इसमें जो हराम चीजें उनमें इन्वॉल्व हो जाए हमारे बच्चे तो गुनाह ही कबीर। नंबर दो के नहीं, हराम में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, दीन की खिदमत कर रहे हैं, इससे बड़ी शायद इबादत कोई ना हो। ये बहुत, मैं जरा गलत लफ्ज कह रहा, बहुत बड़ी बात है। एक ये कि नहीं ना, दीन की खिदमत कर रहे हैं ना नुकसान कर रहे हैं, बस अपना खाली इंटरटेनमेंट ले रहे। मसल मजलिस में आ गए थे, कोई मैच मिस हो गया वर्ल्ड कप का, तो वो जाके उन्होंने इसके ऊपर देख लिया, ना कोई फायदा दीन को ना नुकसान, तब भी जायज। ये तीसरी कैटेगरी में ज्यादा लोग आते हैं, दूसरी कैटेगरी के अंदर वो बच्चे आते हैं जो ग्रुप बना बना के दीन की खिदमत, और ये वो फरीजा है जो आज से ज़ैनब कुबरा ने संभाला। भैया तूने तलवार का जिहाद किया है, तबलीग का जिहाद मैं करूंगा। किस तरह से इस फरीजे को अंजाम दिया, आसान नहीं है। ज़ैनब का रोल इतना अहम है कि अरबईन के अशरे में उलमा बयान करते रहते, वो वहां पे आएगा। लेकिन पहले तो आज 11th मुहर्रम का दिन करबला में आ गया, 11th मुहर्रम का दिन आ गया। उमर साद ने कहा कि अब चलने की तैयारी। मैं आप सिर्फ एक जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं गलतफहमी ना हो, बाद रिवायतों में है कि उमर साद ने कटे हुए सर तो रात को ही भिजवा दिए थे शाम में करीब, लेकिन करबला की रिवायतों में आप इस तरह की रिसर्च में मत जाइए जो आम तौर पे मशहूर। क्या रहा मुहर्रम थी, उमर साद ने कहा कि सैदानियों को अब कैदी बना के ले जाना, और जब उनको ले जाया जा रहा था तो पहला इम्तिहान तो यही था कि हर बीवी को मदीने की रवानगी याद आ। जब मदीने से हम चल रहे थे तो महमिलें थी, हमारियां थी, पर्दे पड़े थे, और सबसे बढ़कर यह कि सवार कराने वाले हमारे वारिस जिंदा थे। उम्मे फरवा के लिए कासिम था, लैला के लिए अकबर था, कुलसूम के लिए अब्बास था, हत्ता ज़ैनब के लिए हुसैन थे, और आज ना महमिल है, ना हमारी है, ना पर्दे है, ना कोई सवार कराने वाला। हर बीबी को अपना अपना वारिस याद आया। उस वक्त ज़ैनब ने सहारा दिया कि शरीकतुल हुसैन है ज़ैनब। अक्सर एक जुमला कहता हूं, शाम गरीबा तक ज़ैनब ज़ैनब थी, शाम गरीबा आई तो ज़ैनब खत्म हो गई। अब ज़ैनब के भी हुसैन बनी, ज़ैनब कभी अब्बास बनी, ज़ैनब कभी अकबर बनी। बीबियों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। एक एक बीबी को सवार कराए, आखिर में खुद ज़ैनब की बारी आई। दाएं देखा बाएं देखा, मदीना याद। एक नहीं, सब वहां सहारा देने वाले महरम मर्द थे। बड़ी हसरत से कहा, बस तेरी बहन सवार हो रही है, तू भी सहारा ना देगा? बस मेरा बीमार इमाम आगे बढ़ा, आज से करबला की जिम्मेदारी मेरी। फूफी अम्मा घबराइए नहीं, मैं आपको सवार कराता हूं। और इसके बाद यह काफिला चला। उमर साद ने कहा, ऊंटों को शहीदों के लाशों के दरमियान से। बस इधर ये काफिला शहीदों के लाशों की तरफ गया और हर बीबी की निगाह अपने अपने वारिस के लाशें पे चली पड़ी। हर बीबी ने अपने आप को वारिस के लाशे पे गिरा दिया। कासिम के बदन के टुकड़े देख के फरवा आ रही है। लैला के कलेजे में बरछी तो है, लेकिन एक मरतबा अकबर के कलेजे में बरछी है, लैला जा रही है। कुलसूम फरात की जानिब चली, अब्बास मेरा भैया अब्बास, लेकिन जैनब की तवज्जो सज्जाद की तरफ। जैनब की जिम्मेदारी, सज्जाद का प्रोटेक्शन है। क्या देखा, सज्जाद का पूरा चेहरा जर्द हो गया, पूरा जिस्म कांप रहा, और ऐसा लग रहा है कि सज्जाद मरने वाले। अरे मेरे सज्जाद की हालत क्यों हुई? क्या देखा, सज्जाद की निगाह मैदान के एक बेगोर कफन लाशे पे पड़ी। जवान बेटा बूढ़े बाबा का लाशा देखता जा रहा है, पूरा जिस्म कांपता जा रहा है। जैनब को यकीन हो गया कि अगर अटेंशन नहीं हटाई तो सज्जाद मर जाएगा। जैनब ने भतीजे की तवज्जो लाश से हटाई। कैसे हटाई? आवाज नहीं दी। कभी ऐसा होता आदमी सुनता भी नहीं है। जैनब ने अपने आप को चलते ऊंट से गिरा दिया। फूफी के गिरने की आवाज आई। सज्जाद ने चौंक के देखा, फूफी अम्मा, तवज्जो हट गई, लेकिन मैंने तो कह दिया और आपने सुन लिया। जैनब ने ऊंट से गिराया तो किस तरह गिराया? ज़ियारत का जुमला है, मेरा सलाम उस शहजादी पर जिनके दोनों हाथ उनकी गर्दन से बंधे। गिरने वाला हमेशा सहारा दे, हाथों का सहारा लेता। हाय वो ज़ैनब जिसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हैं और सर के बल जमीन कर्बला से टकरा रही। और फिर सज्जाद को बचा के ये काफिला चला। अब ये पहला दिन नहीं, बार बार ज़ैनब को अपने सज्जाद को बचाना है। काफिला कूफे में पहुंच गया। ये बाजार है कूफा। काफिले को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? देखिए, छोटा सा बाजार है, गलियां बहुत करीब करीब है, ऊंट की हाइट भी बहुत ज्यादा। काफिला रोक दिया गया। क्यों रोका गया? उमर सात को जल्दी है, काफिला जल्दी से ले चलो। इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर आ गया, काफिले को रोक दो। क्यों? दो रीजन बता रहा है, जरा सुनिए। दो रीजन का पहला रीजन ये है कि अभी मेरे दरबार का डेकोरेशन इनकम्प्लीट है। पहले मेरा दरबार मुकम्मल डेकोरेट हो जाए, फिर मोहम्मद के नवासियों को बुलाऊंगा। भले ये धूप के अंदर जलते सूरज के नीचे बगैर चादर के बगैर महमिल के ऊंटों पे बैठी। और दूसरी वजह क्या बताता है वो मालूम? कहता है दूसरी वजह ये है कि तुम काफिले को लेके आ गए, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं होगा। इतनी देर मोहम्मद की नवासियों को खड़ा करो कि कूफे का एक एक मर्द इन औरतों के चेहरे पर अच्छी तरह निगाह डाले। मोहम्मद की नवासियां हैं, अली की बहुएं हैं, फातिमा की बेटियां। मेरा गैरतमंद इमाम जिसने कर्बला में कहीं मौजजा ना दिखाया, बर्दाश्त न कर सका, कौन? आका हुसैन कटा सर नो के नेजा पे तिलावत कुरान कर रहा। वही जो मजलिस में भी बात आई थी, अब कटे हुए सर की तिलावत। इतनी अजीब बात है कि सारे मजमे की अटेंशन उधर हो गई। हुसैन ने मौजजा दिखाकर अपनी बहनों के पर्दे को बचा लिया, लेकिन काफिला रुका रुका। इसी कूफे में एक बहुत ही ज़ईफ औरत रहती थी जो अकेली थी, उम्मे हबीबा उसका नाम। वो अकेली है, उसे दुनिया की कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा। आज सुबह उसके कानों में हाकिम का ऐलान आया, सारे मर्द नए कपड़े पहन के सड़कों पे खड़े होकर ईद मनाएंगे, और सारी औरतें तैयार होकर मकान की छतों पे बैठ के ईद मनाएंगी। हाकिम का हुक्म था, वो भी आ गई। उसने देखा मेरे घर के करीब जो ऊंट रखा है उसके अंदर कोई ज़ईफ खातून सर झुकाए बैठी हैं, और उनकी गोद में एक बहुत नन्ही सी बच्ची। बच्ची तो उसको पता नहीं कौन है, खातून कौन है पता नहीं, लेकिन इतना वो देख रही है कि बिल्कुल मेरे घर के करीब है। बच्ची के रुखसार पे तमाचों के निशान नजर आ रहे हैं और कानों से खून नजर आ रहा। लेकिन अगला जुमला उम्मे हबीबा थड़प उठी। बच्ची ने सर उठाया, कहा फूफी अम्मा, कर्बला में तो मुझे पानी नहीं मिला था, क्या यहां भी कोई मुझे पानी नहीं देगा? मैं बहुत प्यासी हूं, मैं बहुत प्यासी। ज़ैनब तो कोई जवाब न दे सकी। उम्मे हबीबा का दिल तड़प उठा। इतनी सी बच्ची, नन्ही बच्ची, पानी मांग रही है। दौड़ के गई, पानी का कूजा अपने घर से भर के आई, हाथ बढ़ा के पानी बच्ची के हवाले किया और कहा कि ले ये पानी पी ले। क्योंकि पानी का सवाल तो हुसैन भी कर चुके थे, बच्ची ने पानी ले लिया। अभी पानी पीना चाहती है कि उम्मे हबीबा का अगला जुमला कान में आया, पानी हटा दिया होंठों से, पिया नहीं पिया नहीं। क्या जुमला था? कहा, ऐ बच्ची, जब तू पानी पी ले तो मेरे हक में दो दुआएं करना, क्योंकि मैंने सुना है खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ बहुत जल्द कबूल किया करता। बच्ची बहुत छोटी, बच्ची बहुत प्यासी है, मगर मुश्किल कुशा अली की पोती है ना, एक मर्तबा कहा पहले अपनी दुआ बता, पहले तेरी हाजत पूरी होगी फिर मैं पानी पीऊंगी। कहा पहली दुआ तो अभी अभी मेरे जहन में आई, खुदा मेरे बच्चों को तेरी तरह से यतीम और कैदी ना बना। बच्ची ने नन्ने नन्ने हाथ जोड़े, खुदा बंदा मेरे बूढ़े बाबा के कटे सर का वास्ता, जैसी यतीमी और कैद सकीना पर आई है इस मोमिना के बच्चे महफूज रहे। और हाँ तेरी दूसरी दुआ क्या है? कब मैं बहुत बूढ़ी हो गई, बस एक ही दुआ है, एक मर्तबा मरने से पहले खुदा मुझे मदीने की जियारत का मौका दे दे। सकीना तो दुआ करने लगी। जैनब ने अपने शहर का नाम दुश्मनों के शहर में सुना, चौके उम्मे हबीबा को देखा, ऐ ज़ईफा मदीने की दुआ क्यों कर रही? हो सकता है वो कहते रोज़े रसूल पे जाने का। नहीं, अरे मदीना मेरे मौला अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का वतन है। जैनब ने कहा लेकिन अब तो अली भी ना रहे फातिमा भी ना रही। जवाब देती है तो क्या हुआ, मेरी शहजादी फातिमा की वारिस जैनब कुबरा तो जिंदा है ना। जैनब ने कहा तूने खारी नाम सुना है कि जैनब को पहचानती भी है? उम्मे हबीबा बड़े फख्र से कहती है लो कैसी बात करती हो, पहले तो हर साल बीबी की जियारत को जाती थी, बुढ़ापे की वजह से अब कई साल से न जा सकी। बस इतना सुनना था, जैनब ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नामहरम नजर नहीं आया। जैनब ने बालों को जरा सा हटाया चेहरे से, कहा उम्मे हबीबा जरा देख के पहचान ले, मैं ही फातिमा की बेटी जैनब हूँ जो तेरे शहर में आ गई। बस वो आखिरी जुमला जो हर मजलिस में आ रहा है, एक मर्तबा उम्मे हबीबा ने देखा तड़प के कहा शहजादी आप तो इस शहर में शहजादी बन के रह चुकी हैं, आपकी चादर छिन गई, आपके बाजू में रस्सियां बन गई, आप कैदी हो गई। अरे मेरा आका अब्बास कहाँ चला गया, अरे अब्बास कहाँ गया कि उसकी बहन को कैदी। खुदा बंदा बाबुल हवाइज अब्बास आलमदार को एक मरतबा फिर करबला में याद किया गया। ये तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो अब्बास का नाम सुन के रो रही, जो ज़ैनब कुबरा के मसाए पे आंसू बहा रही, और सबसे बढ़कर सरकार सैयद शोहदा का मातम कर रहे हैं, खुदा बंदा इस मातम और इस आंसुओं का वास्ता गमे हुसैन के अलावा इन्हें दुनिया आखिरत की हर गम और परेशानी से नजात देना। खुदा बंदा जिस तरह सकीना ने कहा पहले मैं अपने मानने वालों की हाजत पूरी करूंगी, इस मजलिस में जो जो हाजतमंद बैठा है सारी हाजतें पूरी फरमा। सकीना के लुटे घर का वास्ता हमारे तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा। खुदावंदा इस अजीम कुर्बानी का वास्ता हमें सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। दुनिया भर में जहां जहां आज़ादारान इमाम मज़लूम और मुहिब्बान अहले बैत मौजूद हैं, उनके माल उनकी जान उनकी इज्जत उनकी औलाद की हिफाजत फरमा, और इन मजालिम के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। मातम।